वुजू के बाद की दुआएं। क्या वुजू से पहले, वुजू के दौरान और वुजू के बाद में कुछ दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी ने बताई? तो जी बिल्कुल हैं। वुजू के बाद की मसनून दुआएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी पूरा वुजू करे फिर ये कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो इसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। जरा सोचिए क्या ऑनर है, एक ही दरवाजा काफी था। मुराद है कि जिधर से मर्जी आओ, यानी एक उस इंसान को वेलकम करने की कैफियत है। ये सही मुस्लिम की रिवायत 234 है। तो इससे क्या पता चला कि ये दुआ मांगनी चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, हमेशा मांगते हैं? बच्चों को सिखाइए, छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी चीजों को आप में अगर अपनी जिंदगी में लेकर चलेंगे तो आपको इससे इंशाल्लाह ताला फायदा ही होगा। और आप देखिए कि ये वो दुआएं होती हैं कि जिसको सीखने और मांगने से इंसान नमाज में भी ज्यादा फोकस हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक और दुआ भी है, वो भी मांग लेते हैं मिलके, बल्कि एक दो दुआएं जो अब साथ हैं वो रखते हैं। मसा अबू दाऊद के एक रिवायत में इस दुआ को आसमान की तरफ नजर उठाकर पढ़ने का जिक्र है, मगर ये रिवायत सही नहीं। इसमें अबू अकील का चचाजात भाई मजहूल है। यानी किसी वजह से ये दुआ, यानी यही दुआ जब भी पढ़ी है, बाज कहते हैं कि इसको आसमान की तरफ देख के पढ़ें, हम भी पढ़ते थे, जब ये हदीस पढ़ी तो छोड़ दिए। हमारा क्या इशू है? देखिए, जहां ईगो नहीं, जहां किसी के साथ कोई एक खास तौर पे एफिलिएशन नहीं, हदीस समझ के पकड़ता है बंदा, और अगर हदीस ही कहती है कि नहीं तो उसको छोड़ देता है, बहस की तो कोई बात ही नहीं है। तो लिहाजा हदीस है कि आसमान की तरफ देखना। अब हमारा हाल यह कि जब कहते हैं ना आसमान की तरफ देख, फिर हम साथ चूम भी लेते हैं, कुछ चूमने को कहते हैं तो जाके लिपट भी जाएंगे। हमारे कल्चर में कुछ ना कुछ डालना है वैसे, माजरत के साथ। थोड़ी सी बात हदीस में होती है, थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं। सही अल्फाज खोल के अरबी के ओरिजिनल टेक्स्ट देख लीजिए, वो लफ्ज भी नहीं होते। तो बहरहाल वजू के बाद की एक और दुआ है, उसको भी दोहराते हैं मिलके। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग्फिरुका व अतूबु इलैक। ए अल्लाह, तो अपनी तमाम तारीफों के साथ हर ऐब से पाक है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरे हजूर तौबा करता हूँ। कितनी प्यारी दुआ। वुजू असल में जहनी तैयारी है कि थोड़ी देर मुझे छोड़ दो। वो जैसे हमने एक पीछे कोड वर्ड बनाया था ना कि ये मेरा मीटिंग टाइम है, मेरी अपॉइंटमेंट है, तो नमाज आपकी मेरी अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटेड होती है खास वक्त और एक जगह पे जाना। तो वुजू के दौरान इन दुआओं को बनाए। आप अपने लिए आज से एक और टिप ले लीजिए, वुजू से लेकर नमाज तक आपको कितना वक्त लगता है, खुद नोट कीजिए अपना। नॉर्मल जब आप पढ़ते हैं वुजू करने में, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो बाद में दो नफिल पढ़ लीजिए, वुजू के नफिल का अजर मिलेगा, और उसके बाद आप अगर उसको नमाज पढ़ते हैं आधा घंटा भी अगर रखते हैं सिर्फ फर्ज और वुजू में, लोगों से छुट्टी ले लें, घर वालों को भी, ये मेरा ब्रेक टाइम है, अब मैंने इस पे फोन नहीं उठाना, क्या आधा घंटा फोन बंद करने से कोई कयामत आ जाएगी, एक कॉल नहीं मिस होती, सारी बाद में होती है। बहरहाल इन दुआओं को याद करना चाहिए। फिर इसका तर्जमा क्या था कि अल्लाह तो अपनी तमाम तारीफों के साथ हर ऐब से पाक है, मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूं और तेरे हजूर तौबा करता हूं। अब जब आप इस शऊर के साथ मांगेंगे, इसमें गुनाहों की बात है, तौबा की बात है, अल्लाह के ऐब बेऐब होने की बात है, तो आप बताइए कि क्या अपने गुनाह नहीं याद आएंगे? ये है असल में नमाज। आप सफाई कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि दाग है किधर, आपको पता ही नहीं मट्टी किधर, और आप बातें करते हुए करें आधी चीजें गंदी होंगी। हम तो नमाज पढ़ के आते हैं, हमारी नमाज में गुनाह हो जाते हैं, हमारी नमाज कोई उस तरह की क्लीनिंग वाली नमाज नहीं रही जैसी कि होनी चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन सारी चीजों को अपने अमल में ढालने वाला बनाए। शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन बाद में अल्लाह चाहेगा तो वो ऐसे जैसे सांस चलती है ना, तो खुद ब खुद वो दुआएं आपके मेरे जुबान पे होंगी। तो एक और दुआ जरा मिलके मांगते हैं, वुजू के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तवाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ए अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वालों में से बना दे और मुझे पाक साफ रहने वालों में कर दे। देखिए दो लफ्ज हैं, दोनों ही सुपरलेटिव हैं, तवाब और मुततहर, यानी बहुत शिद्दत के साथ एक तो तौबा करने की बात है और पाक रहने की दुआ है। और आप देखिए कि इसके दलाइल मौजूद हैं जामे तिर्मिजी की रिवायत नंबर 55 है। अब ये तो थी वो दुआएं जो मसनून है, और मसनून का लफ्ज पीछे आपसे जिक्र किया था कि जो सुन्नत से साबित है, पुरानी चीज। पुरानी वो चीज होती है जो अल्लाह के नबी के दौर से चलती है। इसके बरक्स कुछ दुआएं जो आज हैं लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं कही, तो ऐसी दुआओं को हम कह सकते हैं मन घड़त, मन मिन दिल, कुछ लोगों ने खुद से घड़ी हुई हैं। अब ये क्यों की जाती हैं ये तो एक अलग इशू है, लेकिन आप कह लीजिए गैर मसनून दुआएं कौन सी हैं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह और बाद में शहादतैन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, और मस्कूरा दुआएं यानी ये जो अभी ऊपर की हैं, ये पढ़ना साबित है। लेकिन बाज लोग वुजू में हर उज्व धोते हुए वो दुआएं पढ़ते हैं जो आजकल मुरव्विजा, मुरव्विजा कहते हैं जिसका रिवाज है, फैशन, यानी वो सुन्नत में नहीं लेकिन लोगों ने एक दूसरे को पढ़ते देखा तो उन्होंने भी पढ़नी शुरू की, तो ऐसी नमाज की किताबों में पाई जाती हैं। लेकिन ये दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के अमल से साबित नहीं। अल्लाह ताला ने जब अपने रसूल पर दीन मुकम्मल कर दिया तो फिर दीनी और शरई उमूर में कमी बेशी करना किसी उम्मती के लिए हरगिज जायज नहीं। इमाम नववी रहमहुल्ला और हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्ला फरमाते हैं, हर उज्व के लिए मखसूस अस्कार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज साबित नहीं। और आप खुद नोट करिए ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर हर एक्शन पे आप दुआ करें तो कुल्ली करते हो कैसे दुआ करेंगे, चेहरे पे जब पानी डाल रहे हो उस वक्त दुआ कैसे करेंगे, नाक में पानी डालते वक्त कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा अलग अलग से कुछ नहीं, इतनी बात क्लियर है। खुलासा क्या निकला कि कोई भी ऐसी दुआएं नहीं है जो कि अमूमन किताबों में होती है। अगर आप किसी भी किताब में देखें तो उसमें चेक कीजिए कि क्या हदीस का रेफरेंस है कि नहीं है। तो बहरहाल ये भी कोई शिद्दत की बात नहीं। अब अगर आपके घर में ऐसी कोई बुक है या आपकी नानी दादी को पढ़ती थी तो इट्स ओके। तो हमेशा अदब और मैनर के साथ दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर इन बातों को बड़ी आजजी और डाउन टू अर्थ होकर कीजिए कि भाई ये बात है नहीं समझ, इस ओके, किसी और की जुबान से आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि सुनते 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 बंदा वो बात का यूज्ड हो चुका होता है। अब आपने एक बात अल्लाह की रहमत से सीख ली, इल्म से अल्लाह ने आपको दीन दिया, या आप बल्कि इस पे और शुक्र कीजिए। तो जिनके पास इल्म नहीं उनको इल्म तक जोड़िए, और हर बंदे को अपना नफा नुकसान पता होता है, याद रखिए, कोई बगावत ना हो। अदरवाइज कम अज कम इबादत के मामले में जानबूझ के गलत काम कोई नहीं करता, क्योंकि इसमें गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी दुआएं। अब हम देखते हैं कुछ मसाइल, यानी जनरल चीजें जिससे आपके बहुत सारे सवालात का जवाब मिलता है। मसलन आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि एक एक उसको तीन तीन दफा धोना फर्ज है, पानी थोड़ा हो तो क्या करें, ऐसे है ना सवाल। तो आइए जरा कुछ मसले मसाइल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अहदीस में वजू के अज़ा को दो दो बार और एक एक बार धोने का भी जिक्र आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का अक्सर अमल तीन तीन बार धोने पर रहा है। इब्ने हजम फरमाते हैं कि सब उलमा का इत्तेफाक है कि अज़ा का एक एक बार धोना भी काफी है। अब आप बोलिए इस पर झगड़ा करेंगे, एक बार भी काफी है, तीन सुन्नत है। तो लिहाजा इसमें क्या है कि अगर कभी एक दफा भी करना पड़े कोई हर्ज की बात नहीं, तीन दफा करें तो बहुत अच्छी बात है। मसनून तीन से जायद नहीं कर सकते, ये भी नोट करें जी। एक आराबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वुजू की कैफियत दरियाफ्त की तो आपने इसे अज़ा का तीन तीन बार धोना सिखाया और फरमाया इस तरह कामिल वुजू है। फिर जो शख्स अज़ाए वुजू को तीन बार से ज्यादा धोए, ठीक है, या यूं कमी करे कि किसी उसको छोड़ दे या पूरा न धोए, तो इसने तरके सुन्नत की बिना पर बुरा किया और मसनून हद से तजावुज करके ज्यादती की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके अपनी जान पर जुल्म का इर्तिकाब किया। ठीक है, गलती माफ है, भूल चुक माफ है, लेकिन जानबूझ के अगर कोई ऐसा करेगा तो गुनाह होगा। और ये रिवायत अबू दाऊद की है 135, हसन दर्जे की रिवायत है। फिर निसाई में भी, इब्ने खुजैमा की 174 हदीस में भी, और इसी तरह और भी यहाँ रेफरेंस सारे बुक में से ज़रूर बाद में पढ़िए कि अगर कभी कहीं मैं ना भी बोलूँ तो लेकिन आपके इस लिखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो क्या खुलासा निकला अभी तक कि वुजू के हर उसको एक एक दफ़ा धोना मस्ट है, दो दफ़ा या तीन दफ़ा भी करें तो कोई हर्ज नहीं। अमूमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार धोते थे, 3 से ज़ायद बार नहीं धोना चाहिए। बात ख़त्म हो गई। अब फायदे देखते हैं। अब खूबसूरत हदीसें आ रही हैं जिससे इंशाल्लाह आपको एक तो रग़बत मिलेगी कि हर वक्त वुजू से रहें, और दूसरी बात यह कि बार बार वुजू करें तो मसनून वुजू से गुनाहों की बख्शिश। आप बिल्कुल अब इसको सुनते विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त बंदा मोमिन वुजू शुरू करता है फिर कुली करता है और नाक झाड़ता है तो इसके मुंह और नाक के गुनाह निकल जाते हैं, फिर जिस वक्त चेहरा धोता है इसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं, चेहरा धोते वक्त गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिरते हैं, और जिस वक्त वो कोहनियों समेत हाथ धोता है तो इसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों हाथों के नाहनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, फिर जिस वक्त मसह करता है तो इसके बालों के किनारों से गुनाह निकल जाते हैं, फिर जिस वक्त पाँव धोता है इसके दोनों पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाहनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, फिर इसके बाद अगर वो खड़ा हुआ और नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला की तारीफ सना और बुजुर्गी इस तरह बयान की जैसा कि इसका हक है, और अपना दिल अल्लाह की याद के लिए फारिग किया तो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है जैसे वो उस दिन पाक था जब इसे इसकी माँ ने जना था, यानी न्यू बॉर्न बेबी की तरह बिल्कुल गुनाहों से पाक। और ये रिवायत सही मुस्लिम 832 में है और निसाई में 103 भी है। और जो निसाई की रिवायत है ना उसमें चेहरा धोने के साथ आंखों की पलकों के नीचे से के गुनाह भी का जिक्र है, और सर के मसे के साथ कानों के गुनाहों के निकल जाने का भी तذکرہ मौजूद है। अल्लाह अकबर। क्या पता चला कि वुजू बड़ी एहतियात से करना चाहिए, संवार के करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और अज़ा को खूब अच्छी तरह से और 3-3 बार धोना चाहिए ताकि जर्रा बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। एक शख्स ने वजू किया और अपने कदम पर नाखून के बराबर जगह खुश छोड़ दी, यानी इतनी कुछ जगह खाली छोड़ दी जिसमें पानी ना पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया वापस जाओ और अच्छी तरह से वजू करो। अब ये क्या चीज है कि उसका वजू नहीं हुआ। और ये जो रिवायत आपको बताई है ये वाली जिसमें ये जिक्र है कि आपने कहा जाओ और वजू करो, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नंबर भी नोट कीजिएगा 243। अब आप नोट कीजिएगा एक नाहून बराबर जगह भी खुश्क रहने पे आपने कहा कि वजू जाकर दोबारा करो, और दूसरी तरफ हम आगे जाके पढ़ेंगे तो यम्मुम पानी का कतरा भी नहीं फिर भी वजू होता है, तो फर्क किस बात का है? फर्क इस बात का है कि आम हुक्म ये है और जब मजबूरियां आई जब कुछ भी हुआ तो वो दूसरी तरफ चला गया। इस हदीस की बुनियाद पे मुहद्दिसीन की बात को कोट करते हुए अक्सर लोग कहते हैं कि नेल पॉलिश जो लगी हो जिसकी वजह से नाखूनों तक वजू का पानी नहीं जाता तो वजू कैसे हुआ? यहां तो एक नाखून की बात है, जब आपके 5 और 5, 10, 20 नाखून खुश्क रह गए तो वो नमाज नहीं होगी। इसलिए फिर वही बात जो पीछे भी तस्करा हुआ कि नेल पॉलिश लगाने से पहले वजू कीजिए फिर लगा लें, अगर आप कहीं जा रहे हैं आपका दिल भी चाह रहा है लगा लें। और नेल पॉलिश में ऑफकोर्स कोई हराम चीज नहीं, अल्कोहल नहीं, कोई शराब नहीं, कोई पिक की चीज नहीं, उस वजू से जितनी नमाजें पढ़े पढ़ लें। ज्यों ही आपका वजू टूटा और आपको अब अगली नमाज पढ़नी है तो आपको फिर वो जगह साफ करनी पड़ेगी। जो शौक से लगाते हैं उनको कोई हर्ज नहीं है, वो उतार लेंगे, बल्कि अच्छा है कि दूसरा शेड लगा लेंगे। एक ही बार बार लगाने की बजाय बार बार बदल लीजिए। यानी बहुत लोग सोचते हैं कि इस्लाम नेल पॉलिश के दुश्मन है और बहुत सारा दिन नेल पॉलिश पे ले आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीजों को एहतियात करनी चाहिए। इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंसान इतनी छोटी सी चीज को केयर ना करे। बी केयरफुल, कई दिन आपको अल्लाह देगा बीच में महीने में, आप उन दिनों में लगा लीजिए। अब ये भी नहीं कि दूसरों को भी बताएं कि मैंने इसलिए लगाई है कि मेरे पास ये मसले थे। यानी ये चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है दिस इज पर्सनल मैटर। तो आपको बात समझ आ गई है। फिर एक और आपका सवाल जो बहुत ही अहम हो सकता है कि एक वजू से कितनी नमाजें पढ़ी जा सकती हैं या कुछ, तो इस तरह के कुछ और सवाल भी है। पहली बात जो हमने पूरी की कि वो क्या थी कि नाखून के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रखनी चाहिए। फिर वुजू बुलंदी है, दर्जात का जरिया। नबी सल्लम ने फरमाया कि तहारत आधा ईमान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अपने दिली दोस्त, जरा इस जुमले को नोट करें, दिली दोस्त सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना जन्नत में मोमिन का जेवर यानी नूर वहां तक पहुंचेगा जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है। अल्लाह अकबर, जहां तक पानी जाएगा वहां जेवर है। हदीस में आता है कि एक शख्स थे तो वो यहां तक धो रहे थे कोनिया पानी ऊपर से डाल डाल के, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा अल्लाह के नबी मैं अपना नूर बढ़ा रहा हूं। और रिवायत में यहां तक आता है कि अल्लाह ने आगाज़े दुनिया से जन्नत में कुछ फरिश्तों को सिर्फ जन्नतियों के जेवर बनाने के लिए मुतय्यन किया हुआ है। दुनिया में तो सिर्फ जेवर औरत पहनती है ना, वहां मर्द भी पहने गए। सारी बातों का खुलासा ये कि अच्छा वजू कीजिए, प्यार से वजू कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो चीज ना बताऊं कि जिसके सबब अल्लाह ताला गुनाह मिटाता है और दरजात बुलंद करता है। सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज की, क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल जरूर इरशाद फरमाए। आपने फरमाया, मुशक्कत यानी बीमारी या सर्दी वगैरह के वक्त कामिल और संवार कर वजू करना। ये कौन सी मुशक्कत होती है? मुशक्कत मेकअप किया हुआ, शादी में गए हुए हैं, ठंडे पानी से वजू करना वगैरह, बीमारी या सर्दी वगैरह। फिर दूसरा अमल है मस्जिदों की तरफ उठने वाले कदमों का ज्यादा होना और नमाज के बाद नमाज का इंतजार करना। ये गुनाह मिटाता है और दरजात बुलंद करता है। हम चाह रहे हैं कैसा हो तो फिर वजू अच्छा करें। यानी आज आपके मेरे इस सारे सेशन के बाद जो चीज़ बहुत ही हमारी अच्छी हो जाए वो हमारा वजू अच्छा हो। और आप अच्छा वजू कीजिए, 90% आपकी नमाज अच्छी हो जाती है। तो वजू अच्छा करना इंशाल्लाह आपको दूसरी चीज़ों में मददगार होगा। फिर इसी तरह से एक और अमल जो बहुत छोटा है, अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक दे, और वो क्या कि जब भी वजू करें दो नफिल पढ़ें। इसको कहते हैं तहैयतुल वुदू, तहैया शुरू को कहते हैं। जैसे कोई किसी को मिलता है तो उसको सलाम करता है, या किल्ला कहते थे ये लोग अरब लोग पहले। तो मुराद ये कि जैसे वेलकम कर, जैसे हम आपके घर आए तो आपने दरवाजा खोल के हमें वेलकम किया ना, इसको तहिया कहते हैं। इसके बारे में आपने फरमाया कि जो शख्स वजू करे और खूब संवार कर अच्छा वजू करे, फिर खड़ा होकर दिल और चेहरे से जाहरी और बातनी तौर पर मुतवज्जे होकर दो रकत नफिल अदा करे, तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के वक्त हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से, यानी आपने नमाज फजर के वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, बिलाल मेरे सामने अपना वो अमल बयान करो जो आपने इस्लाम में किया और जिस पर आपको सवाब की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैंने अपने आगे जन्नत में आपकी जूतियों की आवाज सुनी है। तो हजरत बिलाल ने अर्ज की, मेरे नजदीक जिस अमल पर मुझे सवाब की बहुत ज्यादा उम्मीद है वो ये है कि मैंने रात या दिन में जब भी वजू किया तो वजू के साथ जिस कदर नमाज मेरे मुकद्दर में थी जरूर पढ़ी। जिस कदर से तो लग रहा है कि दो पढ़ते थे और कभी दो से ज्यादा भी नफिल पढ़ लेते होंगे। ये वाली जो रिवायत है सही बुखारी की रिवायत है 1149 और सही मुस्लिम में भी है 245 है फजाइल सहाबा, और जो ऊपर दूसरी रिवायत थी वो बुखारी की 209 है। तो क्या रगबत मिली आपको मुझे कि नमाज से पहले वजू जब करें तो वजू के बाद फिर आप दो नफिल पढ़ लीजिए। वैसे भी जहन साजी के लिए अच्छे होते हैं और बिलाल का मुकाम भी समझ आए, बहुत प्यारा अमल है अगर हमें अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे तो। अगला एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, एक वजू से कई नमाजें अदा की जा सकती हैं? तो हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाजें एक वजू से पढ़ी और मोज़ों पर मसह भी किया। हज़रत उमर ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल आज आपने वो काम किया जो पहले नहीं करते थे। आपने फरमाया, उमर मैंने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि लोगों को एक वजू से कई नमाजें पढ़ने का जवाज मालूम हो जाए। तो ये रिवायत देखिए सही मुस्लिम की 277 है, तो फिर पढ़ सकते हैं एक वजू से पढ़ना। और वैसे भी ये बहुत पसंदीदा अमल है। एक तरफ देखिए वजू करने के बड़े दर्जे हैं, दूसरे वजू से रहने के बहुत दर्जे हैं। हदीस है कि वजू की हिफाजत नहीं करता मगर मुत्तकी, यानी आपके तकवा की दलील है कि वजू किया हुआ है। अब मिसाल है वॉशरूम यूज किया या शावर लिया फिर वजू कर लिया, एक नमाज का किया तो अच्छा दूसरी तक भी रह लेगा। एक तो वजू होगा ना तो बहुत सारी चीज़ों से रुक जाएंगे। फितरी सी बात है कि इंसान फिर अपने आप को केयरफुल रखता है कि मैं वजू की हालत में हूं। दूध पीने से कुल्ली करना, आपने दूध पिया फिर कुल्ली की और फरमाया इसमें चिकनाई है, तो क्या पता चला कि अगर चिकनी चीज खाई जाए जिसका असर दांतों में रहे तो कुल्ली कर लेनी चाहिए। ये बुखारी की रिवायत है 211 और मुस्लिम 358 है। आप कहीं नहीं कर सके, मिसाल है अच्छी तरह से अपने ही जो स्पिट है मुंह में उसके साथ उसका असर खत्म कर दीजिए, ठीक है? कुल्ली नहीं कर सकते, पानी का घूंट लीजिए उसको अच्छी तरह मुंह में खंगाल के पी लीजिए। आपने बकरी का शाना खाया यानी जो दस्ती का गोश्त होता है, इसके बाद नमाज पढ़ी और दोबारा वुजू ना किया, यानी गोश्त खाने से भी नहीं टूटता, ठीक है, लेकिन एक गोश्त खाने से टूटता है, वो कौन सा? ऊंट का गोश्त ना, ठीक है। फिर आपने एक मौके पे सत्तू खाए, फिर कुली की, फिर नमाज पढ़ी और वुजू नहीं किया, तो ये क्या पता चला कि ये बड़ा रिलैक्सेशन के साथ आपने इसको लिया। और ये रिवायतें सारी बुखारी के नंबर 207 और 209 वगैरह, आप उसको बुक में से भी देख सकते हैं। तो खुलासा क्या है, आम खाना खाने के बाद अगर आपने वुजू किया हुआ है तो दोबारा वुजू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको खाने के कुछ असरात मुंह में दिख रहे हैं, चिकनाहट है, खाने के जर्रे हैं, तो बेहतरीन कोशिश है कि आप उसको अच्छी तरह 2-3 घूंट पानी के मुंह में लेकर उसको मुंह में ही हल्का सा घुमा के पी लीजिए, तो ख़त्म हो जाएगा, वो कुल्ली की कुल्ली भी हो गई और वो भी खाना ना ज़ाया हुआ जो आपका कुल्ली के साथ बाहर आना था, क्योंकि वो भी अल्लाह की नेमत थी। फिर इसके बाद मोज़ों वगैरह पर मसख के मुतल्लिक अहकाम और मसाइल। हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुन्तु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अख़वैतु लियन्ज़िया खुफ़ैही फ़क़ाला दअहुमा फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैनी फ़मसख़ा अलैहिमा। मैं एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था, मैंने वुज़ू के वक्त चाहा कि आपके दोनों मोज़े उतार दूँ, आपने फरमाया इन्हें रहने दो, मैंने इन्हें तहारत की हालत में पहना था, फिर आपने इन पर मसाह किया। तहारत की हालत से आप समझें क्या मतलब है, वुजू था। अब यहाँ बहुत अहम बात है जो समझने वाली आपके मेरे लिए, कि जब मोजे पहने तो उस वक्त अभी वुजू नहीं टूटा था। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये सवालात बहुत सारे अहम हो जाते हैं। आप देखिए कि वुजू किया, अभी अभी पहन ले, मामला ख़त्म हो गया। वुजू किया, एक नमाज भी पढ़ ली, दूसरी नमाज भी पढ़ ली, ये भी किया, वो भी किया, सब कुछ कर लिया, अभी वुजू नहीं टूटा, फिर पहन लीजिए। यानी वुजू टूटने से पहले पहले जब आपने एक वुजू की कैफियत के हालत में सॉक्स पहन लिए, तो उसके ऊपर दोबारा फिर मसा किया जा सकता है। लेकिन अगर वुजू किया, नमाज पढ़ चुके थे और वुजू भी टूट चुका था, थोड़ी देर बाद याद है सर्दी लग रही है तो अब सॉक्स पहन लूँ, नहीं, फिर अब आपको दोबारा वजू करके दोबारा फिर पहनेंगे सॉक्स, ठीक है। हमारे कल्चर में इस इशू को भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन हद तक छेड़ा जाता है। मैं ऐसी एक मिसाल जानती हूँ कि मस्जिद अलग हो गई थी सिर्फ इस वजह से दूसरों से कि जो यंग इमाम थे वो सॉक्स पहन के नमाज पढ़ाते थे, तो जो बुजुर्गान थे उस मस्जिद में आने वाले, कुछ अरसा तो काफ़ी मसाइल उठे रहे वहाँ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मस्जिद ही अलग कर ली कि हम ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ ही नहीं सकते कि जो सॉक्स पहन के और मसह के साथ नमाज पढ़ाता है। शिद्दत की इंतहा है और कोई बात नहीं, और चीज़ों को तो हम दूसरों की देख नहीं पाते, वरना हम पता नहीं इससे भी ज़्यादा कितने बड़े फतवे देते। फिर आप देखिए कि अगला हुक्म इसमें क्या है। शुरैख बिन हानी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली से मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत के मुतल्लिक पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए मसह की मुद्दत 3 दिन रात और मुकीम के लिए 1 दिन रात मुकर्रर की है। वजाहत भी सुन लीजिए, इमाम नववी, औज़ाई और इमाम अहमद रहमतुल्लाह कहते हैं कि मसह की मुद्दत मोज़े पहनने के बाद वुजू के टूट जाने से नहीं, बल्कि पहला मसह करने से शुरू होती है। यानी अगर एक शख्स नमाज फजर के लिए वुजू करता है, अब गौर से सुनिएगा, नमाज फजर के लिए वुजू करता है और मोज़े या जुराबे पहन लेता है, फिर नमाज जोहर के लिए वुजू करते वक्त इसने मोज़ों या जुराबों पर मसख किया, तो अगले दिन की नमाज जोहर तक वो मसख कर सकता है। पहली नमाज वो जो बग़ैर मसह की थी, उस वुजू पे जितने भी कर लिए ना, वुजू नहीं टूटा, जितनी नमाजें उस वुजू से पढ़ेंगे, उसके बाद जब वो पहला मसह किया था ना, उसके बाद 5 नमाजें। सुफान बिन असाल रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हालत तेज सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये हुक्म देते थे कि हम अपने मोज़े 3 दिन और 3 रातों तक वॉशरूम यूज़ करना, यानी स्टोल पास करना, पेशाब करना या सोने की वजह से ना उतारें, बल्कि इन पर मसा करें। हाँ, जुनाबत की सूरत में मोज़े उतारने का हुक्म देते थे, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, उसमें तो शावर ही लेना है तो सॉक्स तो उतरेंगे ही उसमें। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुम्बी हो जाने की सूरत में मसख की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, इसलिए गुस्ले जनाबत में मोज़े उतारना लाजिम है, अलबत्ता बोलो बरास यानी टॉयलेट यूज़ करना और नींद के बाद मोज़े ना उतारे जाएं, बल्कि मुय्यना मुद्दत तक इन पर मसख किया जा सकता है। जितनी बात हुई उसका खुलासा कर दूं, यानी आप वुजू करें ठीक तरीके से, आप सॉक्स पहन लें, अब उस वुजू से जितनी भी नमाजें पढ़ लेंगे, कोई हर्ज नहीं। जब वो वजू टूटा, पहली दफा जब मसा करेंगे, तो आप आम दिन, जैसे आजकल आप अपने घर में हैं, इसको हाजिर कहते हैं, हजर, पांच नमाजें, यानी पहला मसा अगर आपने जोहर पे किया है तो फिर अगले दिन तक भी चलेगा, ठीक है। सफर में 3 दिन तक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी अल्लाह ताला ने रुख्सत दी है। और जुनाबत की कैफियत ऐसी है कि उसमें तो जाहिर है वजू ही टूट जाता है, तो फिर मसा टूटने वाली तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है। अब अगला वो इशू जो जुराबों पर मसह करने का तरीका क्या है या उसके कुछ अहकाम, हजरत सोबान रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अमर हम यमसहु अलल असाइबी वतसाखीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करते वक्त सहाबा को पगड़ियों और जुराबों पर मसह करने का हुक्म दिया। वजाहत क्या है कि हर उस जुराब पर मसा करना दुरुस्त है जो सातिरे कदम हो, यानी जिससे पांव छूप जाए। एक हमारे यहाँ वो बारीक सॉक्स है, स्टॉकिंग बोलते हैं उसको, या इतनी थिन स्किनी या नेट की हैं या जिसमें चमड़ी ही लगती है, उस पर नहीं कर सकते, लेकिन आम नॉर्मल जो जुराब दिख रही होती है कि वाकई एक सॉक पहनी है, उस पर किया जाता है। साहबे किराम का जुराबों पर मसाह करना, उकबा बिन अमर अबू मसूद अल अंसारी ने अपनी जुराबों पर मसाह किया, ये भी रिवायत मौजूद है। अमर बिन हुरैस फरमाते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पेशाब किया, फिर वजू करते हुए उन्होंने अपनी जुराबों पर जो जूतों में थी मसख किया। जूतों में क्यों कहा जा रहा है, बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ वो जुराब जो एक जूते के तौर पर इस्तेमाल की जाते हैं, इसको चर्मी बोलते हैं, चर्म कहते हैं चमड़े को, यानी कुछ लोग आज हमारे मुसलमानों में ऐसे हैं वो सिर्फ चमड़े की सॉक्स के ऊपर वजू को जायज़ करते हैं, जो आजकल हम पहनते ही नहीं। लेकिन आजकल लोग चमड़े के जूते तो पहनते हैं, जुराबें तो कपड़े की, क्या अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा कपड़ा तो नहीं था ना, या इस तरीके की सॉक्स तो नहीं मिलती थी, तो उस दौर में लोग पहनते थे चर्मी जुराबें। तो बहरहाल इस पे हमारी उम्मत में इख्तलाफ है। इब्ने हजम ने महल्ला जिल्द 1 324 में 12 सहाबा किराम के हवाले से जुराबों पर मसह करने का तस्करा किया है, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, साद बिन अबी वक्कास और अमर बिन हुरैस रजी अल्लाह अन्हु मजमीन पर भी शामिल है, और इससे सहल बिन साद भी जुराबों पर मसह करते थे, अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु भी जुराबों पर मसह करते थे। इब्ने कुदामा कहते हैं कि जुराबों पर मसह के जवाज पर सहाबा इकराम का इजमा है। चलिए अब जरा डिक्शनरी में से जुराब लफ्ज को देखते हैं, क्योंकि लोग वही बात है जुराब और दूसरे लफ्ज में फर्क कर देते हैं। जुराब का लफ्ज जौरब, अरबी लुगत की मोतबर किताब है, अगर आपने भी कभी पढ़नी हो, कामूस, इसकी जिल्द 146 में है। हर वो चीज जो पाँव पर पहनी जाए जौरब है। देखिए मैं आपसे एक लफ्ज बोलूं, दस्ताना, क्या जहन में आता है आपको, कहिएगा दस्ताने हाथों में पहनो तो कहेंगे ऑफ कोर्स दस्ताने हाथों में पहनते हैं। इसी तरह जुराब पाँव में पहनने वाली चीज, खिमार बोलूं सर का कपड़ा, ओढ़नी, तो बाज लोग ये लफ्ज जुराब में भी गड़बड़ कर देते हैं। ताजुल उरूस में कि जो चीज लिफाफे की तरह पाँव पर पहन ले वो जौरब है, ठीक है। अलामा ऐनी लिखते हैं कि जो जौरब बटे हुए ऊन से बनाई जाती है और पाँव में टखने से ऊपर तक पहनी जाती है, ये बहुत अहम इशू है आज की खवातीन के लिए। आजकल बाज लोग सिर्फ वो सॉक पहनते हैं जिससे पाँव तो छुप जाए लेकिन टखने खुलते हैं, उस पर मसा नहीं होगा, टखने का छुपना लाजिम है। बात तो इतनी छोटी सी एड़ी के ऊपर जगह होती है तो चलने फिरने में उतर जाती है, उससे भी एहतियात करनी चाहिए। अगर आपने वो पहननी है तो नीचे फुल सॉक स्किन की पहन ले, कलर की छुप जाएगी ना, ऊपर फिर ये जो भी डिजाइनिंग वाले या खूबसूरत लगने के लिए होते हैं फिर वो उसके ऊपर पहन लीजिए। इसी तरह आरिदतुल अहवजी में शारे हदीस है, इमाम अबू बकर बिन अल अरबी फरमाते हैं, जौरब हर वो चीज जो पाँव ढांपने के लिए ऊन से बनाई जाती है। उम्दतु रियाया एक किताब है, उसमें कि जुराबें रुई यानी सूत यानी कॉटन की होती हैं और बालों की भी बनती हैं। गायतुल मकसूद भी किताब है, उसमें कि जुराबें चमड़े की, सूफ यानी ऊन की और सूत की भी होती हैं। क्या साबित क्या हुआ कि जौरब लिफाफे या लिबास को कहते हैं, वो लिबास चाहे चर्मी यानी स्किन का लेदर का हो, सूती हो या ऊनी, हम इस पर मसा कर सकते हैं। बात वाजे, इतने इसके दलाइल क्यों इधर लिखे गए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ खास फिक की रोशनी में कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ चमड़े की जराब पे मसा करते हैं, बाकियों पे नहीं करते। नॉर्वे में आपको तो -10 एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है दिसंबर जनवरियों में, यानी माइनस में जब जाता है बंदा, तो हर नमाज से पहले वजू करने से पहले आप सॉक उतारेंगे ना, तो जो नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे नहीं। और दूसरी बात है, लोगों ने एक एक नहीं पहनी होती चीज, पूरी पूरी नीचे लेयर्स होती हैं, बाज तो पूरी टांग से शुरू करके उनकी सॉक्स होती हैं, वो फिर क्या कहेंगे, हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। اتنی سردی میں وضو کے لیے، اور ایک ایک گھنٹے بعد تو نماز ہو رہی ہوتی ہے، ظہر عصر مغرب گھنٹہ ڈیڑھ بیچ میں آتا ہے، فجر اور ظہر کے بیچ میں صرف میرے خیال 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، اس سے بھی کم رہ جاتے ہیں 10، اور اس کے ان بٹوین لے لیجئے، تو شدت نہیں برتنی چاہیے. ہمیشہ علماء کرام کو اور دین کے نمائندوں کو ایسی چیزوں میں برداشت اور سکون کا کام لینا چاہیے. دیکھیے شراب کوئی پیے تو اس پہ کوئی نہیں بولے، حرام ہے، گندگی ہے، جسمانی گندگیاں ہیں، غلاظت ہے، اس پہ بات کریے نا. لوگ سود میں جا رہے ہیں اس پہ زیادہ لڑائی کیجئے، آپ دیکھیے حرام حلال کا فرق نہیں اس پہ بات کیجئے، فن کے نام پہ گندی چیزیں گھروں میں آ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہے. آپ نماز کے نام پہ ایک دوسرے کو جہنمی اور اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے. مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا لیکن بد اخلاقی کے ساتھ ٹھیک نہیں آپ کر سکتے، تو لہٰذا برداشت کیجئے. انشاءاللہ ہر بندے کو بات سمجھ آتی ہے، وہ نہ مانے تو آپ اپنے آپ کو کہا کریں میرا کیا. جیسے مثال ہے، میں اگر اس وقت آپ کو یہ حدیث سے پڑھ کے سنا رہی ہوں نا، اگر آپ بالفرض نہیں مانتے تو میرا کیا جاتا ہے، نہیں تو نہ صحیح. میں نے کوئی ذمہ داری لی ہے کہ میں آپ سے منواؤں؟ میرے دل میں بھی کچھ نہیں آئے گا، میں یہی کہوں گی کہ میں نے ہی نہیں ٹھیک بتایا، یا پہلے سے آپ کچھ ایسی بات جانتے تھے انہوں نے زیادہ اچھا بتایا. دعا کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو چیز دونوں میں ٹھیک ہے، اگر دونوں ہی ٹھیک ہے تو رہنے دیں، میں نے کیوں زبردستی آپ کو چھڑوانا ہے، اور اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہے تو اللہ میرا دل اس پہ ڈال دیں. بحث چھوڑ دیں. اور جب آپ کی انا، اور پھر ایک فیورٹزم، بعض لوگ صرف اپنے اسکول آف تھاٹ کو پروف کرنے کے لیے بحثیں کرتے ہیں، ساری بات سمجھ آتی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو نماز کی بک میں ملیں گی. تو لہٰذا کھلے دل کے ساتھ یہ موضوع سنیے، نہ دل مانے تو نہ مانیے، لیکن بات تو بہرحال یہی ہے.